नमस्कार साथियों, आप सुन रहे मोबाइल वाणी और मोबाइल वाणी के लिए कम्युनिटी मीडिया मैनेजर अशोक शर्मा जी एवं मैं दिनकर पातुकर। आज हमारे साथ विश्वविख्यात गांधीवादी विचारक एवं विश्व शांति निवानो पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय पीवी राजगोपाल जी आपसे रूबरू होने जा रहे। नमस्कार भाई साहब।
नमस्ते नमस्ते दिनकर भाई, अशोक भाई, दोनों को नमस्कार।
भाई साहब, जैसा कि देश में वर्तमान में धार्मिक जाति पंथ ऊंच नीच असुरक्षा राजनीति की बदलती परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में आपने शांति सद्भाव एवं भाईचारे का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। जय जगत यात्रा, पदयात्रा, सत्याग्रह के माध्यम से आपने जो संदेश पहुंचाया, यह कैसे संभव हो पाया, यह मोबाइल वाणी के श्रोताओं को बताइए।
क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि मोबाइल वाणी के माध्यम से मुझे श्रोताओं से बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज सब श्रोताओं को इस बात को समझना है कि देश में विघटनकारी ताकतें ताकतवर हो रहे हैं। क्योंकि भारत जैसे एक देश जहां सर्वधर्म समभाव और एक साथ मिलके रहने के एक संकल्प चाहिए, वहां अगर हम धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से अलग अलग होंगे तो देश को जोड़ के रखना कठिन है। तो मेरा प्रयास रहा है निरंतर बहुत वर्षों से कि ग्रामीण स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षित करें ताकि वो न्याय और शांति के लिए काम करें। क्योंकि शांति पुलिस से और आर्मी से आने वाले शांति परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। परमानेंट शांति न्याय से आती है। जिस समाज में जस्टिस है, न्याय है, न्यायपूर्ण व्यवस्था से जैसे हमारे परिवार में शांति रहती है वैसे न्यायपूर्ण व्यवस्था से देश में भी शांति रहती है। इसलिए चंबल घाटी के डाकुओं के समर्पण के बाद मैंने ये सोचा कि बंदूक की हिंसा तो समाप्त हो गई, लेकिन अब तो समाज में व्याप्त अप्रत्यक्ष हिंसा जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दमन, शोषण, इससे मुक्ति पानी चाहिए। तो इसलिए उस समय से युवाओं को हम प्यार कर रहे थे कि वो गांव-गांव में जाकर संगठन बनाएं और लोगों को प्यार करें ताकि न्यायपूर्ण व्यवस्था को कायम कर सकें, उससे एक परमानेंट शांति को प्राप्त कर सकें। और इसी प्रशिक्षण में मैं हमेशा उन लोगों को ये भी सिखाता रहा कि सर्वधर्म समभाव को बढ़ाइए, क्योंकि इस देश में सबको मिलके रहना है, सबको एक दूसरे को सम्मान करके रहना है। तो एक तरफ न्याय व्यवस्था की बात और दूसरी तरफ सर्वधर्म समभाव की बात, ऐसे जो काम हुआ है वही काम अभी सम्मानित हो रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि इस प्रकार के काम का बहुत महत्व है, क्योंकि दुनिया में हर देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, मिलके रहने की जो आदत है इसको विकसित करने की आवश्यकता है। भिन्नताओं को खोजना बहुत आसान है, मेरे नाक आपके नाक जैसे नहीं है ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन समानता क्या है मनुष्य में इसको खोजना थोड़ा कठिन है। उस दिशा में लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। तो उसी काम का सम्मान है निवानो पुरस्कार, कि समाज को जोड़ के रखने का, समाज में शांति फैलाने का, समाज में न्याय व्यवस्था कायम करने का। तो उस दृष्टि से आपकी भी भूमिका उसमें रही है, मोबाइल वाणी ने भी मेरे आवाज को निरंतर लोगों तक पहुंचाए हैं, इसलिए आपके भी ताकत से, आपके मदद से ही ये सम्मान हमको प्राप्त हुआ है।
भाई साहब, आज हमारे साथ एक संयुक्त चर्चा में मोबाइल वाणी से प्रदेश समन्वयक अशोक शर्मा जी भी है। हम उनसे भी चाहेंगे कि वे आपसे बातचीत में अपनी सहभागिता निभाए।
जी बिल्कुल दिनकर जी। जी दिनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय हमारे बीच में पीवी राजगोपालन गोपाल जी का। और आज हमारे देश को गर्व है इन पर कि इन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में एक संदेश दिया है, विश्व में शांति का पुरस्कार, निवानो पुरस्कार इनको मिला है। और ग्रामवाणी परिवार पूरी दिल और हृदय से सर का सम्मान और स्वागत करता है। और मैं वही फिर जी मैं फिर वही सवाल जो अभी दिनकर जी कर रहे थे उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। आपने पूरे प्रदेश में जय जगत यात्रा, भारत भ्रमण के दौरान जय जगत यात्रा निकाली और काफी शांति और सद्भावना का एक संदेश आपने पहुंचाया। हम और आप सभी आज ये देख रहे हैं कि किस तरीके की राजनीति चल रही है, इस तरीके के लोगों में परिवर्तन आ रहे हैं, बुद्धि विवेक को कैसे लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दौर में जब आपने इस यात्रा को निकाला तो किस तरीके के अनुभव आपको देखने को मिले सर?
तो अशोक भाई, ये तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि दिल्ली से जेनीवा तक चले
जी,
तो इसका मतलब 11,000 किलोमीटर और 11 देशों को पार करते हुए। तो हमने भारत की यात्रा तो पूरी की, फिर एक डेलीगेशन नेपाल गए, एक डेलीगेशन पाकिस्तान गए, एक दुबई गए, अबू धाबी गए, और एक मेरे लीडरशिप में एक ईरान गए, फिर सब लोग मिलके आर्मेनिया से चलना शुरू किया। दुर्भाग्यवश उस समय कोविड आने से यात्रा पूरा नहीं कर पाया, नहीं तो हम क्या चाह रहे थे, ये ज्यादा महत्व का है कि हम चाह रहे थे कि यहाँ से जेनीवा तक चल के, हवाई जहाज से तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन चल के
जी,
लोगों के अभिलाषाओं को इकट्ठा करते हुए उस बात को यूएन तक पहुंचाओ कि यूनाइटेड नेशन के जो आवाज है वो अभी ऊपर ऊपर की आवाज है, नीचे की आवाज नहीं बन पाए, आम लोगों की आवाज नहीं बन पाए। तो हम कह रहे थे कि सैकड़ों लोग नीचे से चलेंगे, गरीब लोगों से मिलेंगे, स्कूल विद्यालय में स्टूडेंट से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, और ऐसे साधारण आवाज को लेके जेनीवा तक पहुंचेंगे और वहां यूनाइटेड नेशन के लोगों को ये कहेंगे, देखिए इस दुनिया में अगर गरीबी और विषमताओं को दूर करना है, अगर क्लाइमेट क्राइसिस जैसे, जलवायु प्रदूषण जैसे बड़ी समस्या से निपटना है, हिंसा जैसे समस्याओं से निपटना है, तो आम लोगों के मन में जो सुझाव है उसको सुनना होगा। आम लोगों के विचार के आधार पर जब हम काम करने लगते हैं तो चीजें सही में बदलता है, क्योंकि बदलाव तो नीचे चाहिए, ऊपर के बदलाव से सब कुछ बदल गया ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली चमकने से, बॉम्बे चमकने से देश भर चमक गया ऐसा तो हम नहीं मान सकते। ऐसे ब्राजील में भी अगर डियो जनरो में चमक आ गई या संपालों में चमक आ गई तो पूरे ब्राजील में आ गया ऐसा नहीं मान सकते। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि हम इस संदेश को लेके जाएं। आपको खुशी होगी अशोक भाई कि इस पूरे यात्रा में इतना समर्थन मिला, इतना समर्थन मिला, लोगों को लगा सही में आम लोगों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना, आम लोगों की आवाज को जेनीवा तक पहुंचाना, ये एक बहुत महत्व का काम है, इसलिए लोग दिल खोल के साथ दिए। जब हम लोग छिंदवाड़ा पहुंचे, दिनकर भाई को पता है कि 25,000 स्कूल के बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए हमारे स्वागत में, और दुनिया भर के आए हुए लोग उन बच्चों के साथ मिलकर जय जगत का गाना गाया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के ग्रास रूट कार्यक्रम जो है, आम लोगों को जोड़ने वाले कार्यक्रम, आम लोगों के अभिलाषाओं को पॉलिसी का भाग बनाने का कार्यक्रम, आम लोगों के समस्याओं को समाप्त करने के लिए जन अभियान बहुत महत्व का काम है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के काम से डेमोक्रेसी मजबूत होगी, प्रजातंत्र मजबूत होगी, लोगों के अंदर प्रेम बढ़ेगा, और नए बच्चे जो है वो प्रेम की बात और सौहार्द की बात और आपस में मिलकर रहने की बात सीखेंगे और गरीबों को मदद करने की बात सीखेंगे। तो मुझे लगता है पूरा एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो सांस्कृतिक परिवर्तन जो चाहिए समाज में, मैं और मेरे लिए सब कुछ ये धारणा छोड़ के मेरा जिंदगी सबके लिए है, मैं सबको मदद करूं तब मैं सार्थक हूं, ये बात समझाने का एक अच्छा मौका था। तो उसमें मोबाइल वाणी का भी बहुत समर्थन मिला उस समय, दिनकर भाई साथ साथ चले उस समय, तो मैं आपके प्रति भी आभारी हूं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के काम को और बढ़ावा देने की जरूरत है, सिर्फ स्वार्थ में लिप्त होकर अपने स्वार्थ के लिए काम करने के बदले व्यापक समाज के लिए, जैसे हमारे गाने में हम कहते हैं ना, सबके हित के वास्ते अपना सुख दिशार जा, उस प्रकार का एक माहौल बनाने की जरूरत है अशोक भाई।
तो मैं एक और छोटा सा सवाल था सर, और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित ही हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज आप गांधी जी के विचारों से समर्थन रखते हैं। तो मैं ये जानना चाहता सर कि आदरणीय गांधी जी का एक सपना था कि वो चाहते थे कि असली भारत हमारे गाँव में बसता है, तो गाँव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, ये भी उनका एक विचार था। तो आज हम गांव से जो पलायन की स्थिति को देख रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और वो जो व्यवस्थाओं की कमी हम वहां पर देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखें कि आज देश में आज पूरे विश्व में आज जो सम्मान आपको मिला है, निश्चित ही आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं हमारे प्रति और देश के प्रति। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं सर, कि गांव से जो लोगों का अभी जो ये बढ़ रहा है, पलायन बढ़ रहा है, और हम कैसे हमारे गांव को मजबूत कर सकते हैं?
बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया है और हमारे श्रोताओं को भी ये इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि किस प्रकार के देश के निर्माण की कल्पना वो कर रहे हैं, तो दो बात उन्होंने की जो हमको समझना है। एक तो उन्होंने कहा कि जब कभी कोई योजना बनाए वो उस समय अंतिम व्यक्ति को मन में रखे बनाना, क्योंकि जैसे घर में सबसे छोटे बच्चे का हम ध्यान रखते हैं, बीमार व्यक्ति का हम पहले ध्यान रखते हैं, वैसे समाज में अंतिम व्यक्ति जो हाशिए पर जी रहे हैं, वंचित हैं, उनके बारे में पहले सोचना। तो महात्मा गांधी के लिए सर्वोदय की कल्पना अंत्योदय से जुड़ा है, अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ा के सबको मिला के चलने वाली कल्पना को उन्होंने सर्वोदय कहा है। तो अंत्योदय से सर्वोदय की ओर वाला कल्पना है, तो ये अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी ताकतवर लोग सारी सुविधाएं ले रहे हैं और संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, और अंतिम व्यक्ति अभी भी पलायन करने के लिए मजबूर है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, तो गांधी जी से सीखने का एक बात ये है। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने जैसे आपने कहा अशोक भाई, उन्होंने ये कहा कि गांव स्वावलंबी होगा, माने 5 लाख गांव है भारत में, 5 लाख स्वावलंबी गांव, स्वाश्रयी गांव इकट्ठा होगा, उसका नाम भारत देश होगा। उन्होंने कहा कि 500,000 सेल्फ गवर्न्ड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस यूनाइटिंग इनटू अ नेशन कॉल्ड इंडिया। तो महात्मा गांधी के मन में कल्पना बहुत साफ था और आजाद भारत के बारे में तस्वीर उनके मन में साफ था, लेकिन कालांतर में हम लोग उस बात को भूल गए। हम लोग बड़े बड़े, अभी तो हालत ये हो गया है कि 1% लोगों के हाथ में देश के करीब 65% संपत्ति आ गया है। तो ये विकास की जो धारा है इसे बहुत नुकसान पहुंचा है, इसको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए मैं जब ग्रामीण लेवल में संगठन बनाता हूं तो इसी बात को कहता हूं कि विकास के नाम पर गरीब लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके हाथ के जल जंगल जमीन जो है छीना जा रहा है और कुछ लोगों की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार के विकास से विनाश होगा, इस प्रकार के विकास से सही विकास सबका नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि गांधी जी के विचार पर वापस जाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए एक बात और कह दूं, इसी कारण से गांधी जी को समाप्त करने का कोशिश हो रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बार बार गांधी जी के याद करूं, क्योंकि गांधी जी ने जो कहा है वो हमको गरीबों की ओर, वंचितों की ओर, गांव की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वर्तमान विकास व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग उस बात को भूलना चाहते हैं। इसलिए गांधी को कमजोर करो, गांधी को रास्ते से हटाओ। जैसे घर में होता है ना कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी घर में हो जो कहता है दारू मत पियो, गलत काम मत करो, ये मत करो, तो हम चाहते हैं ना कि वो कब खत्म हो जाए ताकि हम आराम से जी सकें। वैसे अब लोग ये आवश्यकता हो गया है सत्ता चलाने वाले लोगों का कि गांधी को रास्ते से हटाओ ताकि हम झूठ बोल सकें, दारू बेच सकें, खूब कमा सकें, अन्याय कर सकें, क्योंकि गांधी याद दिलाने के लिए वहां सामने नहीं रहेगा, तो मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। तो गांधी को याद करना, गांधी को वापस लाना, गांधी विचार के अनुसार समाज को गढ़ना आज की आवश्यकता है। तो उसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, मोबाइल वाणी के सारे श्रोताओं को इस पर विचार करना चाहिए और मिलकर आवाज उठाना चाहिए कि वापस गांधी के रास्ते पर देश को लाओ।
निश्चित ही सर, आपने एकदम झकझोर दिया है अंदर से आत्मा, और लग रहा है कि निश्चित ही ये जो विचारधारा है, ये जो आज हम देख रहे हैं परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, निश्चित ही हमें गांधी जी के विचारों पर विचार करना ही होगा और उनकी सारे कामों को फॉलो करना ही होगा। और आगे की चर्चा के लिए मैं दिनकर जी से कहूंगा कि वो आदरणीय सर का अभिवादन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, और हमारे सभी श्रोता निश्चित ही आपसे, आपकी आवाज और आपके विचारों को सुनकर के जरूर प्रेरणा लेंगे सर। और दिनकर जी,
दिनकर भाई आखिरी बात कहूँ, उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ दिनकर भाई, कि 1929 में एक एक कमीशन ऑन लेबर बना था, ब्रिटिश जमाने की बात कर रहा हूँ, कमीशन ऑन लेबर बना था, मिस रीड की अध्यक्षता में एक महिला है ब्रिटिश लेडी, उन्होंने कहा कि उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो और ज्यादा खराब हो गया, उस समय वो लोग अहमदाबाद और बॉम्बे से विजिट करने के बाद कहा कि ये विकास भारत के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि गांव के लोग जो बहुमुखी जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको तो खाना बनाना भी आता है, जंगल में जाना भी आता है, बैल चराना भी आता है, खेती करना भी आता है, उसको शहर में लाकर सिर्फ एक काम में लगाना उनके मल्टीपल स्किल को समाप्त करने वाला कार्यक्रम होगा, उसको मत करो, ऐसे उस समय उन्होंने कहा था। तो आज अशोक भाई ने जब पलायन की बात कहा तो मुझे याद आया कि इतने इतने सोच वाले लोगों के रिपोर्ट सब हमारे सामने होते हुए भी हम लोगों के हाथ से संसाधन छीन कर उनको मजबूर कर रहे हैं पलायन करने के लिए, झुग्गी झोपड़ियों में शहरों में जीने के लिए। तो इस विकास मॉडल पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता बहुत है दिनकर भाई।
भाई साहब, जैसा कि आप संपूर्ण देश में जल जंगल जमीन के लिए कार्य कर रहे हो, और आपने जो जगत यात्रा निकाली थी वो मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा जिले में जब पहुंची थी, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों ने आपसे प्रेरणा लेकर नित नए नवाचार 2020 से कर रहे, और विशेषकर रामाकोना इकाई के राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के स्वयं सेवक बहुत अच्छा काम कर रहे। तो आज की इस अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई साहब?
युवा लोग ही भारत, मैं अभी अभी जापान से आया हूँ तो देखा हूँ कि वहाँ बुजुर्गों की संख्या अधिक है, युवा लोग नहीं है, युवाओं की संख्या कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। भारत इस बात से बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ बड़े पैमाने पर युवाओं की संख्या है। इस देश को अगर बदलेंगे तो युवा लोग ही बदलेंगे। तो युवाओं को पागलपन में नहीं जाना है और उनको इस पर विश्वास करना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंसा और छुपी के बीच में अहिंसा का एक रास्ता है। हिंसा सही नहीं है, चुप रहना भी सही नहीं है। अहिंसक तरीके से समाज को बदलना, उसके लिए संगठित होना, उसके लिए संघर्ष करना, और समाज को बदलने का मतलब पार्टी बदलना नहीं, समाज को बदलने का मतलब है कि आम लोगों के जिंदगी के हालात को बदलना। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमको लगता है कि झाड़ू लग गया तो साफ सुथरा है, रहने में आनंद आ रहा है। समाज के अन्याय को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, दमन को समाप्त करना और एक अच्छे समाज में जीने की इच्छा हर नौजवान के मन में पैदा हो जाए तो युवा वर्ग मिलकर आज इस देश के हालात को बदल सकते हैं, गरीबों को न्याय दिला सकते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना भी इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि सेवा योजना में लगे हुए युवाओं के अंदर एक विशेष प्रेरणा है और वे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं देश भर में युवा शिविर लगा के। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके उनके ताकत से इस देश को बदलने में हमें मदद मिलेगी।
विश्व निवानो शांति पुरस्कार मिलने पर ग्रामवाणी एवं मोबाइल वाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जंगल सत्याग्रह स्थल लाखनवाड़ी विकास एवं संरक्षण समिति सौंसर तहसील संस्थान सौंसर की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल वाणी पर रूबरू होने के लिए आपका पुनः एक बार मनपूर्वक धन्यवाद एवं आभार भाई साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर भाई, अशोक भाई, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।